समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और करेंगे हम उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शिफाली।
Hello Akarshita and a good afternoon to our dear listeners. I hope you're enjoying your Wednesday afternoon and you are tuned to Parikrama on 100.1 FM. So as Akarshita has already said, for you we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, business, capsules, tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Sultan of Brunei, Haji Hasanul Bolkiah at Bandar Seri Begawan, says comprehensive discussions held to give strategic direction to India-Brunei partnership.
Pradhanmantri apni yatra ke dusre charan mein Singapore pahunche.
President Draupadi Murmu inaugurates Vishwashanti Buddha Vihar at Latur in Maharashtra.
यूक्रेन में मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित कई अधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया, मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना।
इन टाइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, सतीश कुमार करुणाकरन एंड शंकर सुब्रमण्यन एंटर मेन्स सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स।
और पेरिस पैरालंपिक्स में भारतीय एथलीट आज शॉटपुट, निशानेबाजी, तीरंदाजी और पावर लिफ्टिंग में भाग लेंगे।
And now, dear listeners, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And Akarshita, today we'll be talking about CHAP, NIFT.
Jee.
तो पहले तो लिसनर्स आपको बता दें दैट द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन, प्लानिंग, डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड ट्रेड रेगुलेशन ऑफ द टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। दिस इंक्लूड्स ऑल नेचुरल एंड मैनमेड सेल्यूलोसिक फाइबर्स दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स। The ministry has the vision to build state-of-the-art production capacities and achieve a pre-eminent global standing in manufacture and export of all types of textiles, including jute, silk, cotton and wool, and develop a vibrant handlooms and handicraft sector for sustainable economic development and promoting and preserving the age-old cultural heritage in these sectors.
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट द्वारा कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित 14 दिवसीय कार्यक्रम छाप दिल्ली हाट में चल रहा है। कपड़ा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये कार्यक्रम निफ्ट क्राफ्ट क्लस्टर पहल को प्रदर्शित करता है, जो निफ्ट के छात्रों, पूर्व छात्रों और कारीगरों के बीच रचनात्मक सहयोग को बढ़ावा देता है।
जी आकर्षिता, और ये प्रोग्राम, ये इवेंट जो दिल्ली हाट में चल रहा है, साउंड्स एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। इसको एक तरीके का एग्जीबिशन या हम मेला कह सकते हैं, जहां हर टाइप के डिफरेंट टेक्सटाइल्स और डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स डिस्प्ले पे होंगे। एंड आवर लिसनर्स कैन गो and have a look and participate and of course come back with some goods also.
That's true. क्योंकि भारत में जो है, as in India, we have jute, silk, cotton, wool, और हम जानते हैं कि इन सबसे कितने अच्छे अच्छे हैंडीक्राफ्ट जो हस्त शिल्पकार हैं और कितने अच्छे अच्छे जो है क्राफ्ट बनाते हैं। सस्टेनेबल भी है, इन्वायरमेंट के लिए हमारे लिए अच्छा भी है और डेवलपमेंट को भी नहीं रोकता है। और एक तरीके से अभी जो आज की हमारी जो आवश्यकता है वो यही है कि हम सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को जो है ज्यादा से ज्यादा उनको प्रमोट करें, और जो कि ये इवेंट जो है वो प्रमोट कर रहा है।
एग्जैक्टली, एंड हमारा कल्चर भी रिच है, इट्स इको फ्रेंडली ऑल्सो, बट इट्स ऑल्सो सो डाइवर्स। हमने अक्सर अपनी मम्मियों को देखा है अलग अलग साड़ियां पहनते हुए, मधुबनी हो गई, कांथा हो गई, तशर सिल्क की हो गई। तो बिल्कुल, दिस इज समथिंग दैट इज डेफिनेटली एक्साइटिंग। एंड लिसनर्स, देर आर मोर देन 160 स्टॉल्स ऑफ आर्टिसंस, हैंडलूम वीवर्स एंड कोलैबोरेटिव स्टॉल्स ऑफ डिजाइनर्स एंड आर्टिसंस हैव बीन सेट अप एट दिस इवेंट। दीज आर्टिसंस एंड हैंडलूम वीवर्स हैव बीन इन्वाइटेड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री।
दिल्ली हाट में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट की भागीदारी शैक्षणिक उत्कृष्टता और शिल्प आधारित अनुप्रयोगों के बीच की खाई को पाटने के अपने मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि शिफाली हम जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम एकेडमिक्स में तो बहुत अच्छे हैं, हमें निफ्ट में एडमिशन मिल गया है, यू नो बींग अ स्टूडेंट वी आर वेरी क्रिएटिव, लेकिन जब बात आती है कि हम उसको शिल्प आधारित अनुप्रयोगों में लाएं, उसका एक एक्सपेरिमेंटल उसका करें कि हमें आर्ट तो बहुत अच्छी है हमारी, सब कुछ अच्छा है, एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, पर उसको रियल लाइफ में कैसे हम जो है
यूज कर सकते हैं, यूजिंग आर एक्सपर्टीज टू टेक आवर स्टफ फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, राइट?
तो एक तरीके से जो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान और इसकी भागीदारी है इसमें, इससे क्या होगा कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी उन चीजों का इस्तेमाल कर सकेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू थोड़ा सा आपने आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट कर सकेंगे।
बिल्कुल।
और इसका उद्देश्य जो ये हो रहा है शिफाली, उसका कि निफ्ट के छात्रों और पूर्व छात्रों को दर्शकों के मध्य अपनी रचनात्मक कला का प्रदर्शन दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म दे रहा है ये एक तरीके से, क्योंकि उनकी भी जो क्रिएटिविटी है, मान लीजिए उन्होंने छोटा सा एक पर्सी बनाया है, वो कॉटन का है या किसी बहुत जूट का बैग्स आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है शिफाली, अगर हम देखें तो अगर वो छोटे से बैग भी बना रहे हैं तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि वो शोकेस कर सकते हैं ऑडियंस को, एंड वी ऑडियंस कैन ऑल्सो परचेज इट, और हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को।
प्रिसाइसली आकर्षिता, सो इट्स प्रैक्टिकल, इट्स सस्टेनेबल एंड ऑफ कोर्स इट्स फैशनेबल। सो वी हैव समन्वय एज वेल, विच विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट द इवेंट टू प्रेजेंट अ क्यूरेटेड कलेक्शन ऑफ को क्रिएटेड डिजाइन्स फ्रॉम निफ्ट्स टैलेंटेड एलुमनाई। द शोकेस विल फीचर अ रेंज ऑफ एनसेंबल्स दैट ब्लेंड मॉडर्न एस्थेटिक्स विद ट्रेडिशनल टेक्निक्स, रिफ्लेक्टिंग निफ्ट्स कमिटमेंट टू फॉस्टरिंग इनोवेशन व्हाइल ऑनरिंग इंडियन कल्चरल हेरिटेज।
और सतत विकास के लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी हो रहा है शिफाली, हम जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड फॉर आर लाइक कंट्री
टुडे।
तो उसके लिए जो है इसके तहत सृजन जो है एक इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई तरह की आकर्षक व्यवहारिक कार्यशालाएं और विशेषज्ञ नेतृत्व वाले सत्र शामिल होंगे, और ये कार्यशालाएं सतत विकास के अनुकूल उत्पादों और कलाओं के बारे में जानकारी देंगी, जो डिजाइनर्स और शिल्प उत्साही लोगों के लिए कौशल प्रदान करेगी।
एग्जैक्टली आकर्षिता, ऑल्सो वी हैव संपदा विच इन्वॉल्व्स क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशंस बाय ट्रेडिशनल आर्टिसंस। इट शोकेसेस द एक्सक्विजिट स्किल्स ऑफ इंडियाज मास्टर आर्टिसंस एज दे डेमोन्स्ट्रेट ट्रेडिशनल क्राफ्ट टेक्निक्स। निफ्ट एम्स टू ऑनर द इंट्रिकेट स्किल्स ऑफ दीज क्राफ्ट पीपल वाइल फॉस्टरिंग अ ग्रेटर अप्रिसिएशन फॉर द रोल ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक्स इन प्रेजेंट डे फैशन। अटेंडीज विल गेन फर्स्ट हैंड इनसाइट इन टू द आर्टिस्ट्री एंड कॉम्प्लेक्सिटी दैट डिफाइन इंडियन क्राफ्ट। The exhibit presents a dynamic partnership between artisans, students and the Department of Fashion Communication at NIFT, Delhi campus. Each piece in the exhibit represents a thoughtful blend of artistic vision and skill, resulting in innovative designs that honor traditional craftsmanship while exploring new creative frontiers. And not only this, dear listeners, we also have some musical performances. Tarang, which is a lineup of indie bands showcasing the vibrant and eclectic sounds of contemporary music, will also be held. From folk and acoustic to electronic and alternative genres, these performances will add a dynamic musical dimension to the event, enhancing the overall experience for visitors. And now, let us know a little more from our correspondent Pallavi.
Artisans and weavers from across the country have gathered at Dilli Haat, each bringing their unique stories and techniques. These craftsmen, who are key participants in NIFT's Craft Cluster initiative, offers students and visitors a rare glimpse into the world of traditional Indian craftsmanship. With more than 160 stalls featuring artisans, handloom weavers, and collaborative efforts between designers and craftsmen, the event provides a comprehensive view of the country's artisanal landscape. The event offers a wide array of cultural experience. Throughout the 14 days, attendees can engage in workshops, view exhibitions, and enjoy a variety of musical performances that create a festive atmosphere. One of the highlights of the event is Sampada, a segment dedicated to the skills of country's master artisans. Through live demonstrations, visitors can visit firsthand the meticulous artistry that defines Indian crafts. This segment not only pays homage to these artisans, but also offers a deeper appreciation for the complex processes and cultural significance behind each piece of craftsmanship. Pallavi Parmar for Parikarma.
और शिफाली, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ये कार्यक्रम जो छाप है ये 15 तारीख तक चल रहा है, तो आप जा सकते हैं दिल्ली हाट में और हैंडलूम्स प्रोडक्ट और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेक्सटाइल्स, जूट, सिल्क, कॉटन के आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। और
डेफिनेटली सो लिसनर्स, प्लीज गो अहेड, एंजॉय द क्राफ्ट मेला छाप एंड इनकरेज एंड सपोर्ट आवर क्राफ्ट्समैन।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। राष्ट्रपति भवन में जारी अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन संस्करण में कल शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर के शिक्षक भ्रमण करेंगे। अमृत उद्यान का ग्रीष्मकालीन संस्करण 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला है। हालांकि 5 सितंबर को केवल शिक्षकों को ही उद्यान में प्रवेश मिलेगा। पेश है हमारे दिल्ली संवाददाता रईसुद्दीन की यह रिपोर्ट।
स्टार्ट कर देना।
तो आइए चलते हैं हम ईटानगर की तरफ से और देखते हैं कि वहां पे क्या हालचाल है, क्या रिपोर्ट्स हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स की।
डेफिनेटली आकर्षिता, इन अरुणाचल प्रदेश इन्वेस्टिचर सेरेमनी ऑफ द गवर्नर्स अवार्ड्स फॉर द असम राइफल्स वाज हेल्ड एट राजभवन इन ईटानगर टुडे। अ रिपोर्ट।
अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल केतिपा नायक रिटायर्ड टुडे प्रेजेंटेड द गवर्नर्स गोल्ड एंड सिल्वर मेडल टू ऑफिसर्स एंड पर्सनल्स ऑफ असम राइफल्स यूनिट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन एन इन्वेस्टिचर ceremony held at Rajbhavan in Itanagar. Speaking on the occasion, the governor appreciated the services of the Assam Rifles in the northeastern region. He said armed forces has successfully carried out welfare services in the region and has won the trust of the people. He said Assam Rifles has been actively deployed in conventional warfare, anti-insurgency missions, maintaining law and order, disaster management, social welfare activities in far-flung areas and other activities. He said in its glorious history of 189 years, Assam Rifles' achievements display its valor, courage and sacrifices of its soldiers.
Assam Rifles ne abhi sabhi kshetron mein apne jan kalyan karyon ke madhyam se uttar purv ke logon ka vishwas jeeta hai aur apne adarsh vakya uttar purv ke prahari ko sahi thehraya hai. अरुणाचल में तिरप चांगलांग और लॉन्गडिंग जैसे क्षेत्र में उग्रवादियों के खिलाफ कार्यवाही करना कठिन एवं चुनौती भरा कार्य है जिसको आप लोगों ने बेहतर तरीके से हमेशा अंजाम दिया है।
ऑन द ओकेजन 13 गोल्ड मेडल्स एंड 10 सिल्वर मेडल्स वर अवार्डेड टू असम राइफल पर्सनल टू रिकॉग्नाइज देयर एक्सीलेंस इन वेरियस फील्ड्स। फॉर परिक्रमा, दिस इज राकेश दोले, आकाशवाणी न्यूज, ईटानगर।
शिफाली, अगर हमारे खान पान, हमारी वेशभूषा अलग हो सकती है तो त्यौहार क्यों नहीं, हम त्यौहार भी तो अलग तरीके से मना सकते हैं।
Absolutely.
एक ही त्यौहार को।
Yes.
तो जी हाँ, जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों में त्यौहार मनाने का तरीका भी बदल रहा है। ऐसे ही त्यौहार के बदलते रूप के बारे में जानते हैं हमारे मुंबई संवाददाता से।
महाराष्ट्र में सावन महीने की अमावस्या को पोड़ा त्यौहार मनाया जाता है। खेती में किसानों की मदद करने वाले बैल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का यह त्योहार है। इस दिन बैल को नहलाया जाता है, सजाया जाता है, उसे आकर्षक तरीके से विभिन्न वस्त्र एवं अन्य आभूषण पहनाए जाते हैं। पूरनपोली खिला के किसान भाई गांव के सभी पशुओं का एक जुलूस निकालते हैं। इस दिन इन पशुओं को कोई काम नहीं दिया जाता है। खेती में महिलाएं भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब वाशिम जिले के ढोरखेड़ा गांव में पोड़ा उत्सव महिलाएं मना रही हैं। पिछले 8 साल से इस उत्सव की सभी तैयारियां, जुलूस, इनमें महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पोड़ा के अगले दिन विदर्भ में कुछ जगह पर तान्हा पोड़ा यानी बच्चों का पोड़ा मनाया जाता है। इस उत्सव में बच्चे अपने खिलौने में से बैलगाड़ी, बैल घर घर ले जाते हैं और मिठाई तोहफा प्राप्त करते हैं। तंत्रज्ञान में बदलाव के कारण बहुत जगहों पर बैलों की जगह ट्रैक्टर ने ले ली है। इसी कारण अब किसान पोड़ा के त्योहार के दिन ट्रैक्टर का जुलूस निकालने लगे हैं। हाल ही में हुए पोड़ा त्योहार के दिन बहुत गाँव के किसानों ने अपने अपने ट्रैक्टर सजाए और उनको जुलूस निकाला। बुलढाणा जिले के मेहकर गांव में निकाले गए जुलूस में लगभग 200 ट्रैक्टर शामिल हुए थे। अन्य जगहों पर भी ट्रैक्टर के जुलूस में बहुत भीड़ जमा हुई थी। महाराष्ट्र के किसानों ने बदलते समय के साथ साथ अपने त्योहारों में भी परिवर्तन कर लिया है, यही इससे साफ हो रहा है। परिक्रमा के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
एंड आकर्षिता, इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर्स वी हैव सीन दैट पीपल ऑलवेज स्टेप अप टू सपोर्ट ईच अदर। सिमिलरली आंध्र प्रदेश पीपल हैव यूनाइटेड टू सपोर्ट फ्लड विक्टिम्स इन विजयवाड़ा, ऑफरिंग डोनेशंस, एसेंशियल सप्लाइज एंड शेल्टर। द कम्बाइंड एफर्ट्स ऑफ द पीपल एंड गवर्नमेंट शो द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ द कम्युनिटी इन टाइम्स of crisis. More on this from our correspondent.
As the water slowly recedes, the spirit of unity in Vijayawada shines brightly in response to the Andhra Pradesh Chief Minister Nara Chandrababu Naidu's appeal to support flood victims. People of the state have come together to support flood victims and participate in the crisis response in Vijayawada. Donations of money, food and clothing are pouring in from every corner. Donors are reaching out the special donation collection point that has been set up at the Indira Gandhi Municipal Stadium and contributing the supplies. Volunteers are working tirelessly in relief camps, distributing essential supplies and offering comfort to those in need. Medical teams are treating the sick and preventing disease outbreaks. Community kitchens and religious institutions have opened their doors, offering food and shelter. The combined efforts of the people and government show the true strength of the community in times of crisis. This united response brings hope and healing to those affected by the floods. Allu Murali for Parikrama from Vijayawada.
और राष्ट्रपति भवन में जारी अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन संस्करण में कल शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर के शिक्षक भ्रमण करेंगे। अमृत उद्यान का ग्रीष्मकालीन संस्करण 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला हुआ है, हालांकि 5 सितंबर को केवल शिक्षकों को ही उद्यान में प्रवेश मिलेगा। पेश है हमारी दिल्ली संवाददाता रईसुद्दीन की ये रिपोर्ट।
राष्ट्रपति भवन ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशभर के शिक्षकों को अमृत उद्यान आने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भी देशभर के खिलाड़ियों ने राष्ट्रपति भवन के विशेष आमंत्रण पर अमृत उद्यान का भ्रमण किया था। अमृत उद्यान में इस बार आगंतुकों के बीच मौसमी फूल और पौधे आकर्षण का केंद्र हैं। इनमें बॉन्साई गार्डन, रोज गार्डन, सेंटर लॉन में विशेष किस्म के फूल शामिल हैं। बच्चों के लिए ट्री हाउस, बाल वाटिका और शिक्षण कक्ष जैसी व्यवस्थाएं भी लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। आगंतुक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अमृत उद्यान में निशुल्क भ्रमण कर सकते हैं। हालांकि उद्यान में प्रवेश केवल राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से शाम 5 बजे तक ही किया जा सकता है। उद्यान देखने के लिए टिकट राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से बुक किए जा सकते हैं। आगंतुकों की सुविधा के लिए केंद्र सचिवालय, मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सेवाएं उपलब्ध हैं। परिक्रमा के लिए दिल्ली से रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार।
मध्य प्रदेश के धार जिले में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय पोषण माह भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इस अभियान ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण संबंधी परिणामों को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया पोषण अभियान कुपोषण की चुनौती का मुकाबला करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे भोपाल संवाददाता संजीव शर्मा।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्रीमती ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2018 से प्रारंभ किए गए इस अभियान ने पूरे देश, विशेषकर आदिवासी अंचलों में कुपोषण से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अभियान के माध्यम से कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में हमें उल्लेखनीय सफलता मिली है।
माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि कुपोषित बच्चों को और माताओं को ये जानकारी देके ज्यादा से ज्यादा जानकारी महिलाओं को पहुंचाए, ताकि हम कुपोषित पे नियंत्रण पाए, जो लगातार पूरे देश में चलाया जाएगा।
उन्होंने बताया इसके साथ महिलाओं को कई कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य प्रदेश सरकार कर रही है, जिससे महिलाएं आगे आकर कई दिशाओं में कार्य करने लगी हैं। श्रीमती ठाकुर ने कहा कि धार जिला सिकल सेल एनीमिया से निजात पाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के सामाजिक संगठन और एनजीओ सभी सरकारी सहयोग से लक्ष्य प्राप्ति में जुट जाएं। श्रीमती ठाकुर ने कहा कि सभी महिलाएं आंगनवाड़ी जाएं और आयुष्मान कार्ड सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अवश्य लें। इस अवसर पर मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया भी उपस्थित थीं। कार्यक्रम स्थल पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी प्रदर्शनी भी लगाई गई। परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा।
Now listeners, we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we salute the globally renowned Indian nationalist and critic of British economic policy in India, Dadabhai Nauroji, who was born on this day in 1825 in the then Bombay. He was fondly known as the Grand Old Man of India and also the unofficial ambassador of India. A Liberal Party Member of Parliament in the United Kingdom, House of Commons, between 1892 and 1895, and the first Asian to be a British MP, he was widely known for his unfavorable opinion about the economic consequences of British rule in India. He set forth his views about the situation in India over the course of the history of the governance of the country, and the way in which the colonial rulers rule.
Let us listen to an excerpt from the rendition of Dadabhai Naroji's speech on the issue of taxation in India in the House of Commons of the United Kingdom in 1893.
Never has there been a single farthing spent out of the British exchequer, either for the acquirement of India or for the maintenance of it, or administration, or in any manner connected with India, whilst at the same time hundreds of millions of the wealth of India have been constantly poured into this country. Whether any country in the world could stand such drain as India is subjected to is utterly out of the question. If England itself, with all its wealth, was subjected to such a drain as India is subjected to, it would be reduced to extreme poverty before long.
He was appointed a member of the Royal Commission on Indian Expenditure in 1895. In 1886, 1893 and 1906, he presided over the annual sessions of the Indian National Congress. Dadabhai Naroji is regarded as one of the most important Indians during the birth of the nascent independence movement. Naroji was a mentor to Bal Gangadhar Tilak, Gopal Krishna Gokhale and Mohandas Karamchand Gandhi.
Today we also celebrate the birth anniversary of another great freedom fighter and scholar of considerable accomplishment, Bhupendranath Datta, who was born on this day in 1880 in the then Calcutta. Brother of Swami Vivekanand, Datta's religious and social beliefs were shaped by Brahmo Samaj, which included belief in a casteless society, in a single god, and revolts against superstition. A patriot from his youth, Datta joined Bengal Revolutionary Society, formed by Pramathnath Mitra in 1902 to fight against the British rule. In 1906, he became the editor of the newspaper Jugantar Patrika, which was the mouthpiece of the Revolutionary Party of Bengal. In 1907, he was arrested by British police with the charge of sedition. Within days of his release from prison in July 1908, Bhupendranath was sent to America to continue his education. Datta joined Gadar Party in California during World War I. He went to Germany and started revolutionary and political activities there. In 1916, he became the secretary of Indian Independence Committee in Berlin. In 1921, Datta went to Moscow and afterwards returned to India. Bhupendranath worked tirelessly to get the working class their due recognition. Datta was a writer too and wrote several books on Indian culture and society, including one on his elder brother named Swami Vivekanand.
Freedom fighter and Haryana Kesari Pandit Neki Ram Sharma fought against the British throughout his life. He was inspired by the likes of Gopal Krishna Gokhale, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, Punjab Kesari Lala Lajpat Rai and Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya. When Lokmanya Tilak was sentenced to 6 years of rigorous imprisonment, Neki Ram vowed not to sit peacefully until the British rule was over. Initially enamored by extremism, Neki Ram turned to Satyagraha. He first met Mahatma Gandhi during the 1915 Mumbai Congress. He joined the campaign against untouchability under the inspiration of Gandhiji. Pandit Neki Ram Sharma was in the leading role in Anti-Rowlatt Act Movement 1919, Non-Cooperation Movement, Salt Satyagraha and Quit India Movement. May we continue to get inspired by such great souls.
That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar. See you in the next episode tomorrow.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
In badminton, India's Satish Kumar Karunakaran and Shankar Subramanian reached the men's singles quarterfinals of the Taipei Open Badminton Tournament. Karunakaran defeated Kantaphorn Wangcharoen of Thailand 24-22-23-21. In another match, Subramanian defeated his Finnish opponent Joachim Oldorf 21-12-19-21-21-11.
पेरिस पैरालंपिक्स में भारत की सचिन सर्जेराव ने पुरुषों की शॉटपुट F46 में रजत पदक जीत लिया है. उन्होंने 16.32 मीटर गोला फेंक पर रजत देश के नाम किया. ये भारत का 21वां पदक है. सचिन ने इससे पहले विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था. तीरंदाजी में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में हरविंदर सिंह का सामना ताइपे के सिंग लुंग हुई से होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक्स खिलाड़ियों के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर बधाई दी है.
And in business news today, India's equity benchmark indices Sensex and Nifty ended in a negative territory. The decline in the domestic indices can be attributed to the concerns about a potential slowdown in the U.S. economy. At the closing bell, the Sensex, which is a pack of 30 companies, was down 203 points or 0.25% at 82,353, and Nifty 50 declined 81 points or 0.32% at 25,199. In the global crude market, Brent crude was trading at $73.37 per barrel, and WTI crude was trading at $69.96 per barrel, with a drop of 0.5% each when reports last came in. In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading at 71,420 rupees for 10 grams when the reports last came in.
और अब बात उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास, मुंह पर ढक लेती हो आंचल ज्यों डूब रहे रवि पर बादल, सो जाती हो पाखी समीट आंचल में अलस उदासी बन, दो भूले भटके सांध्य विहग पुतली में कर लेते निवास, तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास। जी हां, आज हिंदी आधुनिक साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक डॉ धर्मवीर भाती की पुण्यतिथि है। वे साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी रहे। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता हिंदी साहित्य के इतिहास में सदाबहार माना जाता है। उनकी मुख्य रचनाएं हैं गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग आदि, और उन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
जी बिल्कुल। And dear listeners, today we are observing the death anniversary of Dottie West, an American country singer and songwriter. She also had several credits as an actress. She was known for being the first woman to win a country music accolade from the Grammy Awards. In 1964, her self-penned Here Comes My Baby became a top 10 US country song and won her a Grammy. Writing and co-writing her own material, West had more top 10 Nashville sound influenced singles like Would You Hold It Against Me, Pepper Mansions and Rings of Gold. So now let's listen to her song Here Comes My Baby.
Here comes more misery. Here comes a...
आज हिंदी फिल्मों के अभिनेता, निर्माता व निर्देशक ऋषि कपूर की जयंती है। एक बाल कलाकार के रूप में काम कर उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की थी। उन्हें फिल्म बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ऋषि कपूर ने अपनी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर में शानदार भूमिका के लिए 1971 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया था। आइए सुनते हैं।
दिल लगाना ओ दीवानो, मैंने प्यार करके चैन खोया नींद खोई, अरे झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई, हे प्यार से बढ़कर नहीं।
And dear listeners, today is the birthday of Beyoncé, an American singer, songwriter and businesswoman. Nicknamed Queen Bey, she is regarded as a prominent cultural figure of the 21st century and has been recognized for her distinctive vocal range and live concert performances. Beyoncé's most successful songs include Crazy in Love, Baby Boy, Check on It and Halo. So let's listen to Halo.
Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. Didn't even put up a fight, they didn't even make the sound. I found a way to let you in.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और शिफाली को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।